ओम शांति। शिव की प्रिय संतान है, सिकिलदी हैं, इसलिए हम सबके ऊपर एक बहुत मीठा नाम है जो बाप के साथ में जुड़ा हुआ है। नाम ही है शिव शक्ति पांडव सेना। तो पांडव शब्द जब आते हैं तो भाइयों के मन में ये ख्याल आता है कि ये हमारे लिए इशारा है, और जब शक्ति नाम आता है शिव शक्तियां तो बहनों को ये भान होता है ये बाबा हमारे लिए कहते हैं। परंतु हम आपको कहते हैं कि हम दोनों आत्माओं को, चाहे वो फीमेल रूप में हो चाहे वो मेल रूप में हो, परंतु हम सब आत्मा शिव की संतान है और शिव शक्ति पांडव सेना है। पांडव माना जो प्रीत बुद्धि हो परमात्मा से, तो हम सभी आत्मा प्रीत बुद्धि हैं। और शक्ति किसको कहेंगे, जिसने शिव बाबा से हर प्रकार की शक्तियां अपने में भरी हुई हो, प्राप्त की हुई हो, तो उसमें भी हम सभी आत्माएं आ जाती हैं। तो आज की जो विषय है वो हम सब के लिए लाभदायक है, शिव शक्ति, फिर महादानी, वरदानी हम किसको कहें। शिव शक्ति ही वरदानी और महादानी है। आप भारत के मंदिर में जाएंगे, विदेशों को तो इतना अनुभव नहीं है इस चीज का, शायद विदेश में भी कोई ऐसे मंदिर हो, मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि विदेश में मैंने पूरा विदेश तो नहीं देखा है, लेकिन भारत के कोने कोने में देवियों के मंदिर है, शक्तियों के मंदिर है, और उनके हाथों में बहुत अलंकार है, तो अलंकारों से वो सजी सजाई होती हैं। और खास करके आप जब कलकत्ते के तरफ जाएंगे, बंगाल बिहार तरफ, तो वो देवियों के दिन मनाते हैं नवरात्रि, तो उसमें क्या करती हैं, नौ दिन सब देवियों को सजाते रहते हैं, इतना सजाते, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाती हैं, इतनी कीमती बनाती हैं, जो विदेश के लोग आकर के जब वो 13 दिन या 12 दिन उनका होता है, सारी पब्लिक जितनी भी होती है कलकत्ते के अंदर, यहाँ बिहार बंगाल में, वो सब उस रात को सारी सारी रात जाकर के देवियों के दर्शन करने जाते रहते हैं। हर पंडाल में शक्तियां होती है, हर पंडाल जहां भी जाएंगे छोटी मोटी एरिया में छोटी छोटी देवियां सजा के रखेंगे, बहुत बड़े बड़े हाल होते हैं उसमें बड़ी बड़ी देवियां सजा के रखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर। तो क्यों सजाते हैं, लोगों की इतनी भावना क्यों बैठी हुई है, क्या कारण है? किसी का यादगार देखते हैं तो हमारे मन में संकल्प आता है कि जरूर है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कभी, तब उनका इतना बड़ा यादगार है और उनके हाथ में इतने बड़े बड़े अलंकार है, तो उनका भी कोई रहस्य होगा जिसके कारण है अलंकारों से सजी सजाई उनको दिखाती है, काली देवी, दुर्गा देवी, और क्या है, वैष्णो देवी, सरस्वती देवी, बहुत देवियां हैं जिनके नाम हमको नंबी आते हो, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत प्रकार की देवियां ऐसी सजी सजाई होती हैं, अंबा देवी, दुर्गा देवी, ऐसे मतलब बहुत होती हैं। तो उनके पीछे हम इस रहस्य को जानने चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में तो कई नारियां हैं, परंतु उन नारियों की पूजा नहीं होती है, कईयों में कई अच्छे अच्छे गुण भी होते हैं, प्रवृत्ति में ग्रस्त में होती है, अच्छे अच्छे गुणवान आत्माएं होती हैं, लेकिन उनको शक्ति नहीं कहेंगे, उनको देवी नहीं कहेंगे। तो जिनको देवी कहते हैं या शिव शक्ति कहते हैं, तो वास्तव में वो शिव शक्ति कैसे पैदा हुई, उनका जन्म कोई माता के गर्भ से नहीं होता है, जैसे और नारियों का, कुमारियों का जन्म माता के गर्भ से होता है ना, कुमारों का जन्म माता के गर्भ से होता है ना, परंतु शिव शक्तियों का जन्म माता के गर्भ से नहीं होता है, वो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा के द्वारा पैदा होती है। कैसे? वो निराकार है, देवियां फिर भी साकार में, शक्तियां साकार में दिखाती हैं। तो वो कैसे पैदा होती हैं? तो देवियों का मर जीवा जन्म गाया जाता है, उनके मात पिता स्वयं भगवान हैं। तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान अमृत पान करने वाली आत्मा जो मर जीवा बन जाती हैं, जो श्री मत पर चलती हैं, जिनका एक ईश्वर से योग होता है, एक ईश्वर से नाता रिश्ता है, वो शिवमय शक्ति बन जाती है। तो हम सबको इस बात का अनुभव है, क्योंकि हम सभी बाबा की मुख वंशावली हैं, ईश्वरी संतान हैं, शिव बाबा के साथ नाता जुड़ा हुआ है और शिव बाबा के ही मत पर हम सब चल रहे हैं। उसकी दिव्य मत को धारण करने वाले दिव्य गुणों की मूर्त बन जाते, ज्ञान मूर्त बन जाते, संपूर्ण पवित्र बन जाती, कोई भी विकारों की खाद न रहे। बाबा ऐसा हम बच्चों को बना रहे हैं, जैसे इस समय में ये मूर्तियां सज रही है, स्थूल सिंगार नहीं, स्थूल अलंकार नहीं, पर सूक्ष्म ज्ञान योग के दिव्य गुणों के धारणों के सब अलंकारों से इस समय सब सज रही है, ये सारी सेना ही सज रही है, क्योंकि अभी तो कोई परफेक्ट बना नहीं है, लेकिन सज रही है। अंदर आत्माओं का लक्ष्य है कि फिर से हम ऐसे बन जाएं जैसे पहले थे, जिनका गायन या पूजन है, ऐसे गायन लायक, ऐसे पूजन लायक अभी हम सब बच्चे बन रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि हम वास्तव में किसको कहें शिव शक्ति है। तो बाबा ने कहा, शिव शक्तियों के आगे जब मंदिरों में जाते हैं ना, तो लोग प्रसन्नचित होकर आते हैं। वो जर मूर्ति में भी इतनी ताकत होती है कि उनका दर्शन करके वो संतुष्ट होकर आ जाते हैं और उनकी कई मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अंदर इच्छा लेके जाती है कि मेरा बेटा बीमार है, हे देवी माता, हे काली माता, हे दुर्गा माता, बस मैं तुम्हारा हूँ, तो मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐसा दृढ़ संकल्प रख करके भक्त जाते हैं, थोड़े समय के बाद आकर के घर में देखते हैं तो धीरे धीरे जो मेरा बच्चा है वो ठीक होता जा रहा है। तो उनकी मन में भावना बैठ जाती है कि वरदानी माता ने ऐसा मुझे अंदर से वरदान दिया जो मेरा बेटा ठीक हो गया। बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, माँ बाप की आश होती है, तो ऐसी आशा लेकर के भी मंदिर में मूर्ति के सामने जाते हैं और से देवी माँ को देखते हैं, अंदर में माँ माँ कह करके प्यार से कहते, माँ हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा इसमें पास हो जाए। तो वो संकल्प करते हैं और उनको सिद्धि मिल जाती है। तो वो कहती है वो वरदानी मूर्त है, वरदानी मूर्त की हाँ है जर मूर्ति, प्रैक्टिकल में नहीं, साकार में नहीं, कुछ बोलती नहीं, कुछ देखती भी नहीं, परंतु उन्होंने दिखाया मुख है और आंखें दिखाती है। तो भक्तों की भावना की आंख जब उसमें पड़ जाती है तो उनको अनुभव होता है कि उस देवी ने मेरे को देखा और मुझे ऐसा किया, अब मेरा ये संकल्प पूरा हो जाएगा। तो जब वो घर में जाते हैं और जब उनकी वो बात सिद्ध हो जाती है तो उनकी भावना और पक्की हो जाती है, फिर मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, इस देवी ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, तो अब जो कुछ मेरे मन में है वो मैं उस देवी के ऊपर जाकर के भेंट भोग सब मैं चढ़ाऊं। तो भारत में खास करके ये देवियां मशहूर है, हनुमान पुरुषों में मशहूर है, गणेश पुरुषों में मशहूर है, कार्तिक मशहूर है, लेकिन भारत के कोने कोने में ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ों पर देवियों के मंदिर है। अब वो सभी बातें बाबा कहते हैं, इसी समय तुम शिव शक्तियां हो, शिव के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए शिव के ज्ञान को धारण करने वाले, शिव के साथ संबंध जोड़ने वाले वो ऑटोमेटिकली वरदानी हो जाते हैं, महादानी हो जाते हैं। तो हम महादानी किसको कहें? उससे पहले हम दानी किसको कहें? हमने देखा है लौकिक में भी कई मनुष्य होते हैं जो धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन और अन्न, फिर वस्त्र दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, दवाइयां दान करते हैं, इनसे सूक्ष्म विद्या दान करते हैं। तो दान अनेक प्रकार का होता है, लेकिन दान दान होता है एक, जैसे किसी के पास धन है तो चलो दान कर दिया, इतनी गहरी भावना या रहम की भावना नहीं होती है। धन है नाम के लिए भी दान करते रहते, सब देखेंगे कि ये महादानी है, इसलिए धन है तो पानी का स्थान बना लेंगे, जहाँ जो आएगा प्यासा पानी पिएगा, खुआ खुदवा देंगे, भाई जो प्यासा आवे पानी पिए, तो इसलिए खुआ बना लेगा, या कपड़ों का दान करेंगे, अखबार में डाल देंगे फलाने जगह पर फलाना महादानी ये दान करने वाला है। तो उस दान के पीछे कुछ न कुछ लोगों की स्वार्थ भावना होती है। आज मंदिर बनाते ना तो भी नाम लिख देंगे, फलाने ने इतना दान दिया, तो दान वाले का नाम आया तो नाम का फल उसको मिल गया। तो दान में कोई दिल नहीं होती है, पर दान में स्वार्थ भावना होती है। ऐसे दानी संसार में बहुत है। आज भी जो हॉस्पिटल बनाते तो नाम होता है जसलोक हॉस्पिटल। आज कई ऐसे स्थान है जिसमें धर्मशालाओं के नाम लिखे हुए होते हैं, कई ऐसे स्थान है जिसमें नाम लिखा हुआ होता है, तो नाम का फल मिल गया उसको, तो दान हो गया। जैसे समझो कि यानी है अच्छा काम है, पर उसमें स्वार्थ भाव होता है। लेकिन जिसको हम कहे महादानी, भक्ति मार्ग में भी मैंने महादानी देखे। एक दिन मैं सिरोही में गई, सिरोही हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिरोही में हम बैठे हुए हैं। तो जब मैं वहां गई तो एक ऑफिसर से हमको मिलना था, तो काफी समय हम बैठे रहे, तो उनकी स्त्री ने कहा, बहन जी उनके आने का कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनका समय उनके लिए है ही नहीं। मैंने कहा फिर भी तो भोजन पान करने तो आएगा ना। कहती है वो भी मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं कहा आखिर रात्रि के समय, सुबह के समय, आखिर आराम तो इंसान करता ही है, तो कोई ना कोई समय तो घर में पहुंचेगा ही। कहती है बहन जी वो भी मैं कह नहीं सकती हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कहती है उसका जो है ना श्वास श्वास सेवा के लिए है, गरीबों के पीछे तो जान और प्राण दोनों दे देता है, सिर्फ उसको पता लगे फलां जगह ये नुकसान हुआ है, फटाफट अपना खाना खा रहा होगा ना वो छोड़ करके भाग जाएगा, फिर सारा सारा दिन भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, पानी नहीं पिएगा, पर उस गरीब की पूरी सेवा करके ही छोड़ेगा। बीमार होगा उसको हॉस्पिटल में उठा के छोड़ के आएगा, दूसरों के हवाले करके आएगा कि भाई इसकी सेवा करते रहना। कहती है रास्ते चलते जो मर जाते हैं ना, तो उसे बेलाश बेवारस होते हैं, जिनका कोई वारस नहीं होता है, तो उनको भी क्या करेगा, उसको भी उठा करके दो चार साथियों को उनको भी ठीक स्थान पर शमशान भूमि में पहुंचा करके उसके कफन का पूरा खर्चा खुद करेगा, या उसने अपनी कमेटी बनाई है उनसे करा करके उनका पूरा करके फिर घर में आएगा, स्नान पानी करके फिर शाम को आके भोजन पान करेंगे। तो कहती है बहन जी वो मेरा, मैं पत्नी हूं उसकी, मैंने कभी नहीं देखा कि वो आराम से बैठ करके खाना खाता, उसको हर रोज फोन पिछारे फोन आते रहते हैं, लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, ये लोगों के पीछे, लोग उनके पीछे। कहती है बहन जी मैंने बहुत समझाया है, आखिर तुम्हारा शरीर ठीक होगा तभी तुम कर सकेंगे, तुम कम से कम खाना तो खा के जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। वो कहती है खाना बना के रख दो, तुम भी मेरा इंतजार नहीं करो, तेरा भी मेरे पर बोझ चढ़ जाएगा, मैं आऊंगा तो खाऊंगा, खाना होगा तो खाऊंगा, ना खाना होगा कोई बात नहीं, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब मैं जनता की सेवा करता हूँ। तो लोग उसके लिए बहुत कहते ये तो सच्चा सेवादारी है। कई फिर ऐसे दान देते हैं जिसको गुप्त दानी कहें, यानी दिल से दान करने वाले, ऐसे मुट्ठी से दान करेंगे भर भर करके, जो गिनती न करे कि कितना मैंने दान किया, 500 दिया, 1000 दिया, फिर उसका वर्णन करे कि मैंने 1000 रुपए इसको दिया, अरे मैंने तो उसको दान दिया तभी तो ये आगे बढ़ा, मुख से भी वर्णन नहीं, चित्त में भी वो नहीं गिनती करेगा मैंने इतना दिया। हमारा बाबा ब्रह्मा उनका लौकिक वेग चाचा था, संत उनको लोग संत करके मानते थे, महादानी गुप्त दानी था, धन था परमात्मा की तरफ से, उनको धन अच्छा मिला हुआ था, पर दान करता था ना गुप्त दान, कभी मुझसे वर्णन नहीं करता था मैंने इतना दान किया, और ऐसे मुठियां भर के देता था। जो मनुष्य उसके पास गया उसके अंदर में संकल्प होता है मैं इसके पास जाता मेरे को 5,000 मिलने चाहिए, मेरी कन्या की शादी हो जाए, तो वो सिर्फ कहेगा मेरे कन्या की शादी है, मैं आपके दर पर आया हूं, बस वो ऐसे मुठियां भर के देगा, वो जाके देखेगा कि बरोबर उतना ही पैसा मुझे मिल गया। तो बाबा ने उसका नाम रखा गुप्त दानी, दान का अभिमान नहीं। तो उसको न अपना खाने का, न अपने नाम का, न अपने परिवार का, किसी के लिए भी वो नहीं रखता था। कहते वो अपनी कमाई करती है, पकाती है, खाती है, जो बेचारी गरीब है जिनका कोई नहीं है ना, भगवान ने उसके लिए मेरे को निमित्त बनाया है, उसने हमको निमित्त बनाया है, मैं उनके बंदों की सेवा करूंगा जो भगवान के बच्चे हैं, मैं उनका भाई हूं, मेरा फर्ज है अपने ऐसे भाइयों की सेवा करना जो भूखे हो, जो प्यासे हो, जो बीमार हो। तो उसका नाम सारे शहर में मशहूर था और उसकी आशीर्वाद बाबा को भी मिली थी। बाबा को कहता था तुम्हारा भंडारा ये सारा भरपूर रहेगा, सदा भरपूर रहेगा। अज्ञान काल में बाबा था, परंतु बाबा के अंदर भी दान की भावना इस प्रकार की थी, समाज की सेवा करता था नाम के लिए नहीं, दान करता था, कहता सब आत्माओं के प्रति सबका भला हो। तो बाबा में भी ये संस्कार पक्का हो गया अपने पिताजी की तरफ से, चाचा जी की तरफ से। तो उनको फिर लोग कहते ये तो बड़ा महादानी है, उनका श्वास श्वास भी उस काम में, उनके जो संकल्प चलते हैं ना वो भी रहम से भरे हुए और दूसरों के प्रति भावना बहुत अच्छी, श्रेष्ठ सुख देने की भावना। तो मन वचन कर्म जिसका महादान के लिस्ट में है, मनसा भी अच्छी उसके प्रति, वचन भी अच्छा, और फिर हर कर्म ऐसा होगा जैसे हर कर्म से उनको कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है। ऐसे ही हम ज्ञान मार्ग में देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये महादानी है। बाबा मम्मा के लिए तो सबसे अधिक अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए मम्मा और बाबा है, जिनका श्वास श्वास विश्व के सेवा में, हर संकल्प विश्व के सेवा में, हर जो कर्म इंद्री थी ना वो विश्व के सेवा में लगी हुई थी। अपने खाने पीने के लिए वो नहीं जी रहे थे, अपने सोने के लिए वो नहीं जी रहे थे, अपने मान शान के लिए नहीं जी रहे थे, काम के पीछे जरा भी उनका ये भाव नहीं रहता था इसमें मेरा नाम हो, इसमें मेरा मान हो, मुझे इनसे कुछ प्राप्त हो, कोई स्वार्थ होता है ना, बिल्कुल स्वार्थ नहीं। इसलिए बाबा कहते देखो शिव बाबा जो है वो सबसे बड़े थे बड़ा महादानी है, उनका तो बच्चों में स्वार्थ है ही नहीं, क्योंकि वो सदा दाता है, सदा दाता है, उसका भंडारा सदा सबके लिए खुला है, सिर्फ कोई लेने वाले पात्र चाहिए जो ग्रहण करता रहे, और उसका भंडारा सागर का सदा खुला ही खुला हुआ है। सागर में कोई घाघर डालेगा, सागर से कोई संबंध जोड़ेंगी घाघर, तो सागर का पानी घाघर में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, पर सागर तो दाता है ही है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी बच्चियां मेरे समान हो, मेरे समान हो, जैसा मैं तुम्हारा बाप हूं वैसे तुमको बनना है, तुम्हारे को जो मैं गुण देता हूं मेरे संग में तुम्हारे में गुण आते हैं, तुम्हारे तरफ से जो भी कर्म हो वो ऐसा हो जो कोई भी तुम्हारे पास अवगुण वाला आवे ना तो सुते ही तुम्हारे कर्मों द्वारा उनको गुणों का अनुभव मिले, कैसा भी कुपुत हो वो तुम्हारे संग में आके सपूत बन जाए, कैसा भी अज्ञानी हो तुम्हारे द्वारा दो शब्द उनको ऐसे मिल जाए जो एकदम वो ज्ञानी बन जाए, अज्ञानी से ज्ञानी बन जाए, वो शूद्र से ब्राह्मण बन जाए, वो विकारी से निर्विकारी बन जाए, गुणवान बन जाए। तो ये क्या होता है, बाबा कहते हैं इसकी सिर्फ तुम अपनी धारणा ऐसी रखो जिसे ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन वचन कर्म ऑटोमेटिकली ऐसी भेद की सेवा करेगा जो दूसरों का भला होता ही रहेगा सुता ही। तो जो ऐसा महादानी निरंतर महादानी होगा, निरंतर बाप समान ज्ञान रत्नों का दान करने वाला, गुणों का दान करने वाला, शक्तियों का दान करने वाला, सुता ही शक्तियों का दान होता रहे। कोई भी कमजोर आत्मा हो, तुम्हारे में शक्ति होगी तो तुम्हारे बोल में पावर आ जाएगी। कोई निर्बल आत्मा होगी ना तो निर्बल आत्मा ऐसे बोलेंगी अब मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं चल नहीं सकती हूं, मुझे तुम राय दो मैं क्या करूं। तो जो समर्थ आत्मा शक्तिशाली आत्मा होगी उसके बोल में पावर होंगी, ऐसी पावर होंगी जो उनका बोल उनको तीर के समान लगेगा, उनकी निर्बलता खत्म हो गई, उनको शक्ति मिल गई, ऑटोमेटिकली मिल गई। हमारे पास से एक हमारी पुरानी बहन थी, नाम छुगी था, और सूरत में बिल्कुल साधारण थी, बिल्कुल पहनावा भी साधारण और चलना फिरना ऐसे जैसे एक कोई गामरे वाली हो ना ऐसे, परंतु वो बाबा में बहुत निश्चय बुद्धि थी और धारणा मूर्त त्याग मूर्त थी। तो राखी बांधती थी तो बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाती थी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके सामने आते थे, उन सबको ऐसे बच्चे की तरह से बच्चा समझ करके कहेंगे अरे भगवान आया हुआ है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए, क्या आप ये विकारों का दान नहीं दे सकते हो, क्या आपको विकार अच्छी लगती है, विकार जो बेकार चीज है जिसने तुमको दुखी किया है, क्या तुम विकारों का दान नहीं देंगे आज के दिन। देखो मैं तुमको राखी तब बांधूंगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे। तो वो कहते बहन जी हम कोशिश करेंगे, आप राखी तो बहन के नाते बांध लो, हम कोशिश करेंगे पवित्र रहने की। कहती है पवित्र रहने के लिए कोशिश की जाती है, तो ऐसे बोलती थी जो फटाफट उनसे पांच विकारों का दान ले लेती थी। कहती चिट्ठी लिख विकारों को छोड़, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलूंगी, मेरे पास टिकट है तुम्हारे लिए, मैं तुमको पवित्रता की टिकट दूंगी, तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगी, परंतु आज वायदा कर मैं पवित्रता को छोड़ दूंगा। तो मैं उसको देखती रही, मैंने कहा देखो इसके अंदर विल पावर है, सीधा सीधा कहते नहीं दान करके जाओ, हम लोग भी कोर्स कराती है, समझाती है, हमें प्रेरणा देती है, भाई छोड़ने से फायदा है, छोड़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे। लेकिन वो तो एकदम से पकड़ लेती थी, कहती नहीं तुम छोड़ो, गंदी चीज को पकड़ के बैठे हो, नरक में रहना चाहते हो, क्यों नहीं तुम स्वर्ग में चलते हो। तो मैं उसको देखती रह गई, मैं कहा इसके बोल में बड़ी पावर है, और बड़े बड़े ऑफिसर मामा कह करके कहते बस बस बहन जी चिटकी कहाँ है, हम आपको लिख करके आज पक्का पक्का हम दान दे के जाते हैं, शराब का दान देंगे, विकारों का देंगे, जो जो बात तंग करती है वो दे के जाएंगे। फिर वर्णन करते हैं कि हमको जीते जी से देवी ने मारा, जीते जी मार डाला हमको, ऐसा तीर लगाया जो हम फट से इनके आवास में इतनी शक्ति थी हम बदल गए। मैंने खुद देखा, उसकी एक कहानी है बहुत अच्छी है, मैं बाद में सुनाऊंगी, आप मेरे से पूछ लेना मैं कहीं भूल न जाऊं, मैं अपने टॉपिक को पूरा करूंगी ना बाद में सुना लूंगी। देखो ऐसी आत्माओं के संकल्प कैसे सिद्ध होते हैं, उनके संकल्प में भी ताकत, उनके वचन में भी ताकत, उनके कर्म में भी ताकत, उनकी हर धारणा में ताकत। तो ऐसी ताकत होती है जो ऑटोमेटिकली उनके द्वारा विश्व की सेवा होती रहती है। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं वर्तमान समय में, आप तो हम हमारे भाई वर्तमान में हो, आप कहेंगे मम्मा बाबा ऐसा थे, लेकिन हमको वर्तमान में सैंपल चाहिए। तो हमने प्रैक्टिकल में दोनों तीनों दादियों को देखा है, तो मैं दिल से कहती हूं कि बरोबर हमारी दादियां, उनको न अपने खाने का, न अपने पीने का, न अपने सोने का है, दूसरे बेचारे सुखी होकर के जाए। इनकी ये बात है मन में, ये लेन देन करना चाहती है, पहले मैं उनको दियो पिछा के खाना खाऊं, भूख भी नहीं लगती उनको। सारा दिन देखो सुबह से लेकर रात्रि को 11 बजे तक विश्व की सेवा में बिजी है और दिल से करती है, थकावट नहीं महसूस होती, बीमारी का भी भान नहीं है। अरे नहीं नहीं ये तो तन को बीमारी है, मेरा मन तो ठीक है ना, मैं मन से सेवा करूंगा। तो सोए सोए भी ना जो आएगा ना उनको सोए सोए भी दृष्टि देती रहेगी, सोए सोए भी ऐसे हाथ चलाती रहेंगी ना, तो जिसको गोड़े में दर्द होगा ना तो ऐसे करती रहेंगी ना, तो उसका गोड़े का दर्द भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो पावर जमा है, एकाग्रता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, परमात्मा से वो प्रीत बुद्धि विजयी है, विजयी रतन है, संपूर्णता है अंदर में, भरपूरता, आत्मा भरपूर है, संतुष्ट, सदा संतुष्ट, कोई भी बात में असंतुष्ट नहीं। आप देखेंगे हमारे यहाँ छोटी छोटी बात में असंतुष्ट हो जाएंगे, रहने का पलंग ठीक नहीं मिला तो असंतुष्ट, कमरा ठीक नहीं मिला तो असंतुष्ट, साथी ठीक नहीं मिला तो असंतुष्ट, कहाँ प्रोग्राम बना वो नहीं बना फिर असंतुष्ट। मानो असंतुष्टता लंबी चौड़ी है, बहुत छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे, तो वो महादानी और वरदानी नहीं हो सकते हैं। वरदानी ऐसा होगा वो सोया हुआ होगा ना, तो उनके हाथ पांव से भी सेवा होती रहेगी। दादी जानकी एक बार ऐसी बीमार पड़ गई जो कितने मास तक वो बेड पड़ी थी, परंतु सब भाई बहन सोए सोए भी उनका साक्षात्कार करके जाते थे। वो जैसे दादी जानकी वतन में सोई हुई है, बाबा ने वतन में उसको सुला दिया और भाई बहन जाकर के साक्षात्कार करते, वो वतन में कैसे सोई हुई है, क्योंकि अंतरक आत्मा ना बीमारी से परे थी, बीमारी की भासना नहीं, मैं बीमार हूं, हाय डॉक्टर, हाय फलाना, देह का भान नहीं, दवाइयों की वो चाहना नहीं, दवाई चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, तरफन नहीं, बस शरीर को छोड़ दिया, वो बाबा के पास चली गई। तो एक दो बार जयंती बहन ने हमको अनुभव सुनाया, कहा दादी जानकी ऐसी सोई पड़ी थी जो बात मत पूछो, हमको ऐसा लगा जैसे इस शरीर से वो आत्मा निकल गई है, आराम से निकल गई है, और ये शरीर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, आत्मा ऊपर है, शरीर इधर है। कहती मैं धीरे 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 दादी के ऐसे नब्ज देखती थी कि नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है, और ऐसे नाक के आगे हाथ रख के देखती थी सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो लगता है ये चल रहा है, लेकिन ये कैसे विश्रामी है, जैसे सचमुच परमात्मा के गोद में सोई हुई है। तो सोते सोते भी सेवा, सोते सोते भी जो आया वो एकदम से उनका दर्शन करके साक्षात्कार करके संतुष्ट होके गया। और कई बार ऐसा होता है जैसे कोई समझो दादी हॉस्पिटल में जाती है, कोई वहां बहुत बीमार है, उसको हार्ट में ट्रबल है, बहुत तड़प रहा है, तो ऐसी दादी ना बाबा के याद में सिर्फ उसके हाथ पर दिल पर ऐसे रखेंगी, दृष्टि देंगी बाबा को याद करके, बाबा की याद के साथ साथ उनको दृष्टि देती रहती है, तो उनकी दृष्टि से उनको आराम मिलता रहता है, इंजेक्शन का काम करती है उनकी दृष्टि, उनके हाथ इंजेक्शन का काम करती है, वो जो उसमें हार्ट में बहुत दर्द होता है धीरे 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 बेचारी दर्द से मुक्त हो जाती है, उसको नींद आ जाती है। तो उस समय ये कहते हैं ये तो मेरे लिए एक वरदानी मूर्त थी, ये दान दे दिया मुझे, मैं मर रही थी, तरफ रही थी बिल्कुल, शांति का दान, ऐसा लगा जैसे उसको जीव दान मिल गया। एक यहां पर कोई एमपी आया था, कुछ समय पहले की बात है, तो जिस दिन पहुंचा उसी दिन उसको थोड़ा अटैक आया, अटैक के कारण बहुत मूंझ थी दिल में, तो हमारी दादी को पता लगा, दादी वहां गई, दादी बाबा के याद में ना ऐसे माथे पर ऐसे से करती रही प्यार से, पर बाबा की याद में हाथ फेरती गई। अरे उसको नींद बिल्कुल सारे दिन में बहुत जाता था, नींद नहीं आई, पर दादी ने सिर्फ ऐसे 2-3 बारी ऐसा किया, उसको नींद आ गई। सुबह को उठा तो कहा देखो ये कौन था मेरे आगे, मुझे ऐसे लगा मेरे पास बाबा ही आ गया था, मैं बहुत बेचैन था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर किस घड़ी मुझे नींद आई, सिर्फ मैंने दादी को आया हुआ देखा और प्यार की दृष्टि ली। ये महसूस हुआ कि दादी ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। तो बाबा ऐसी आत्मा से इस प्रकार की सेवा भी कराते हैं, पर उसको अभिमान नहीं रहेगा कि मैंने इसको वरदान दिया। वरदान को यूज करना पाप है। कभी भी कोई को वरदान प्राप्त होवे ना तो उसको यूज ऐसे नहीं करना चाहिए, पर उनका शुद्ध ही कर्म ऐसा होगा जो शुद्ध ही उसको लाभ होगा। कई भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। एक हैदराबाद दखन में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो उसको अपने गुरु की देन है, परंतु देन ऐसी है कि तुम किसी को भी इस चीज में शफा दे सकते हो। सर्जन है बड़ा, तो जिसके गोडे टेढ़े होते ना, बिल्कुल टेढ़े, बचपन से लेके टेढ़े होते हैं या एक्सीडेंट के कारण टेढ़े हो जाते, चल नहीं सकते हैं, तो उनका वो ऐसा ऑपरेशन करता है सहज तरीके से जो उसका वो 6 मास के बाद वो ठीक हो जाता है, सुलाता है, ऑपरेशन भी करता है, पर ऑपरेशन करने में उसको मिला हुआ है कि उसका पैसा तुमको नहीं खाना है, सिर्फ सेवा के लिए तुमको ये यूज करना है। यानी ऑपरेशन करना है, सेवा करो, सेवा भाव, पर उसका पैसा तुमको नहीं खाना है। अगर पैसा खाएंगे तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाए। तो हमारी एक दो बहन का ऑपरेशन हुआ, औरों का तो बहुत हुआ है, लेकिन हमारी भी एक दो बहन गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ है और बहुत वहां से अच्छी होकर के आई है। परंतु वो जब बालकी वहां गई हैदराबाद दखन में, उसने ऑपरेशन कराया, तो बालकी फिर बाबा के याद में सोई रही। तो डॉक्टर को फिर उनसे फीलिंग अच्छी आई, कहा हमारे पास तो कोई देवी आई है, हमको इसके चेहरे से लगा कोई पवित्रता की देवी हमारे पास आई है, जिसके चेहरे में चमक थी, जिसके चेहरे में परमात्मा की याद थी, पवित्र थी एकदम, तो हमको लगा जैसे कोई फरिश्ता हमारे पास आया है। कैसे इसका ऑपरेशन हो गया हमको ये पता नहीं, परमात्मा ने कैसे हमारे से ये कार्य करा लिया। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन का पैसा हम नहीं लेते हैं, और जो काम करने वाले होंगे उनको तो हॉस्पिटल पैसा देती है, पर वो भाई खुद जो सर्जन है वो पैसा नहीं लेता। ऐसे जो वरदानी होंगी ना, उनका हर संकल्प अपने आप से धोता जाएगा, पर वो संकल्प नहीं करेंगे कि बस अब मेरे को ऐसा यूज करना है ताकि मेरा सिद्ध हो जाए। अगर वो संकल्प करेंगे तो वरदान नहीं सिद्ध होगा। अनुभव है हमारे पास, कई भाई बहने आती है, माताएं, बंदली बंदली माताएं आती हैं, पति बहुत मारता है, पति ऐसा है जो मार मार करके उसको कहता है मैं खत्म कर दूंगा, पर मैं तुमको वहां जाने नहीं दूंगा। परंतु फिर वो दादी के पास आती है, प्यार से रो रो करके कहते दादी मेरे को बहुत कड़ा बंधन है, दादी मेरा पति तो ऐसा लगता है सुधरने वाला ही नहीं है, बहुत मैंने कोशिश की है। तो दादी कहेंगे नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, मेरा पति सुधरने वाला नहीं है, तुम ऐसे नहीं बोलना, तुम बाबा की बच्ची हो, तुम ईश्वर की शक्ति हो, और मैं निश्चय से कहती हूं कि तुम्हारा पति भी आगे चल करके कुछ समय के बाद जब प्रत्यक्षता का टाइम नजदीक आएगा तेरा पति भी चलेगा, तेरी इतनी अच्छी लगन है उसका फल तुमको बाबा जरूर देगा। तो थोड़े समय के बाद वो देखती है मेरा पति बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। फौरन आके हमको सुनाती है दादी ने मुझे वरदान दिया था, पर दादी ने वरदान नहीं दिया, दादी ने सिर्फ उस बच्ची की परिस्थिति सुन करके देख करके दादी ने प्यार से ज्ञान के द्वारा उत्तर दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा पति आएगा, ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहो कि नहीं सुधरेगा, और ये सारी दुनिया कोई बदलना है तुम्हारा पति भी बदल जाएगा। फिर थोड़े टाइम के बाद देखती है वो बदला हुआ आया है, कोई की बीमारी होती है, दादी कहती नहीं नहीं तुम ठीक हो जाएंगी, तो सिर्फ बाबा को याद करो, तुम अवश्य ठीक हो जाएंगी, बाबा की याद में रहेंगी तो तुम ठीक हो जाएंगी। तो उसको खुशी की खुराक मिल जाती है, बहुत बड़ा बल मिल जाता है। तो जुबान वरदानी हो गई, पर उसने अपने मन से वरदान समझ के यूज नहीं किया, सुतई उनके नेचुरल भाषा ऐसी होंगी, उनके नेचुरल कर्म पावरफुल होंगे, उनके कर्म इंद्रियों में शक्ति होंगी, ऐसे करेंगे ना तो दूसरे को आराम मिलता रहेगा। तो महादानी वरदानी स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है, माना बाप समान है, जैसे बाबा अचल और अडोल रहा ना, ऐसे समझो जो महादानी होंगे ना वो सदा अपनी स्थिति में अचल होंगे। वो डावाडोल नहीं होंगे, कभी नीचे कभी ऊपर नहीं होंगे, सदा भरपूर एक रस सद दातापन के संस्कार होंगे। लेने का नहीं कि मेरे को मिले, किसी की सेवा करेंगे, स्वार्थ की सेवा नहीं करेंगे। स्वार्थ से ये सब शक्तियां खत्म हो जाती है। पर महादानी माना निरंतर अपनी धारणा ऐसी हो जो गुणों का दान दूसरे को मिलता रहे, आपके संग में बैठे और उसको मिल जाए, आपके दो वचन ऐसे मिले जो प्रैक्टिकल उसके जीवन में लग जाए, तो उसको हम कहेंगे बाप समान स्टेज। जड़ मूर्तियों में आज वो ताकत जो यहां से जमा की हुई है वो जड़ मूर्तियों में अभी है। जड़ मूर्तियों में इतनी ताकत अभी तक है, सारा कल्प पूरा हो गया है। अगर चेतन में हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ऐसी जिसकी धारणा होगी ना, मन की पवित्रता, मन की शुद्धि और स्थिति में दिव्य गुणों की धारणा होगी, सच्चाई होगी मन में, देखो सच्चे के ऊपर साहेब राजी हो जाते हैं। अगर दिल में सच्चाई होगी ना, सच्ची लगन होगी, तो बाबा तुमको मदद करेगा। बाबा कहेगा करण करानहार तो मैं बैठा हूं ना, तुम थोड़ी कुछ करते हो बच्ची, कराने वाला तो मैं हूं। तो सदा वो अपने आप को निमित्त समझेंगे, मैं तो निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट्स हूं, कराने वाला तो मेरे पीछे बाबा है। मैं दादी से जब कभी बात करती हूं, रुगरियान करती हूं बहुत प्यार से, मैं कहती दादी इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इतना विद्यालय चल रहा है, बड़ा अनेक प्रकार की बातें भी विद्यालय के अंदर आती हैं, और कई ऐसी आत्माएं हैं जो विघ्न डालती है अच्छे काम में, अच्छे से अच्छे काम को देख करके वो लोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए विघ्न डालती हैं आश्रय वृत्ति वाली। तो दादी जब कभी विघ्न पड़ जाता है तो आपको थोड़ा फील नहीं होता है? तो दादी कहते नहीं मेरे को नहीं फील होता है। मैं कहती क्यों, ऐसी कौन सी धारणा है जो आपको फील नहीं होता है? तो दादी कहती है देखो मेरा ये पक्का विश्वास है कि जो भी ये यज्ञ का काम चल रहा है ना, ये मैं नहीं कर रही हूं, ये मेरा बाबा ही कर रहा है। बाबा सुखी वतन में जब से गए तब से काम कितना बढ़ गया है। जब साकार में था तब थोड़ा थोड़े बचे थे, मकान छोटा था और सेवाएं भी थोड़े रूप में थी। अभी जब से बाबा सुखी वतन वासी हुआ है, बंधनों से मुक्त हो गया है, तब से देखो सेवाएं कितनी वृद्धि को पा रही है, और सेवा इतनी वृद्धि को पा रही है, कराने वाला करा रहा है, हमको निमित्त रखा है, कठपुतने हम लोग, हमको कहते मैं तुमको नचाता तुम सिर्फ नाच करती रहो, मन श्रीमत पर तुम चलती रहो, काम करने वाला मैं बैठा हुआ हूं। लास्ट में जब दादी गई है ना बाबा के रूम में, किस तारीख गई दादी, कौन सा दिन था वो याद है बहनों को? हाँ शुक्रवार था ना, दिन तारीख कौन सी थी, 26। तो दादी जब 26 तारीख गई ना अभी अभी, तो बाबा के रूम में 5 मिनट गई, तो दादी भी गई, मैं भी गई, मैं भी दादी के साथ में खड़ी थी। तो दादी का चेहरा, मेरा मेरी दृष्टि गई दादी के चेहरे पर, तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा कुछ दे रहा है और दादी ग्रहण कर रही है, दादी का चेहरा खिला हुआ है, यानी दादी को कुछ प्राप्ति हो रही है बाबा के चित्र से। तो चित्र कहें या बाबा कहें, निश्चय से तो बाबा है, वैसे देखो तो चित्र है, आंखों से देखो तो चित्र दिखाई पड़ता है, पर निश्चय के अंक से उसको सामने बाबा था। तो फिर जैसे दादी सामने से इधर आई हमारी तरफ मुंह किया, तो दादी जानकी और ये दोनों मिले आपस में, बहुत प्रेम से रूहानी मुलाकात की, रूहानी मुलाकात में एक दो को दृष्टि दी। तो दादी ने कहा दादी मैं आपको क्या बताऊं, दादी कुमार का ने कहा दादी जानकी को, मैं आपको क्या बताऊं, बाबा ने मुझे क्या संदेश दिया, कहा बच्ची तुम सिर्फ योग का प्रयोग करती रहो, फिर देखो मैं इस साल में कितने अच्छे चमत्कार तुमको दिखाता हूं। तुम योग का प्रयोग करो, तुम शक्तियों का नाम वाला करना है, बाकी बाबा बैठा है, बाबा सब चमत्कार तुमको दिखाता रहेगा, क्योंकि इस साल में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और अगले साल में तो उनसे भी बढ़कर के काम होगा। तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ योग का प्रयोग करो। तो दादी कहती मैं अपने आप को सदा समझती हूं मैं निमित्त हूं, मैं क्यों समझूं मेरे ऊपर बोझ क्यों चढ़ेगा। बोझ होता है गृहस्थियों के ऊपर, जो समझते हैं कि ये मेरा बच्चा है, अब इसका क्या होगा, वो बीमार पड़ गया अब उसका क्या होगा, अब मेरा घर जल गया अब इसका क्या होगा, अब फलाना हो गया अब इसका क्या होगा। तो जिनकी बुद्धि हद में होंगी उनके बुद्धि में बेचैनी होंगी, उनकी अवस्था एक रस नहीं होंगी, वो कभी भी उसकी दृष्टि में वचन में शक्ति नहीं होगी। और जो सदा बेहद में रहने वाला होगा, सदा बाप के साथ जुड़ा हुआ होगा, कंबाइंड होगा, सदा अपने आप को निमित्त भाव में समझेगा, मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं, तो जो उस भावना में एक रस रहेगा, बहुत काल से इसी भावना में होगा, तो उसके वचन में शक्ति, उसके दृष्टि में शक्ति, उनके हर कर्म इंद्र में शक्ति, क्योंकि स्थिति बहुत काल से अचल अडोल है, डामाडोल नहीं है। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल इस युग में भी, वो हमारी सखी भी है, हमारी साथी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, तो हम भी उनके संग रह करके देखते हैं कि देखो निश्चय में कितना बल है, कैसे निश्चिंत होकर चल रही है। बहुत बड़ा विघ्न आ गया, हजारों का नुकसान भी हो गया, तो उनको इफेक्ट नहीं होता है। जिसके द्वारा गफलत हुई उसको समझाएंगे, ये तेरे गफलत से थोड़ा हुआ है, तुमको भविष्य में सावधानी से ये काम करना है, ये बता देंगे, सिखा देंगे, यज्ञ का कणा दाना बहुत कीमती है, परंतु जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं होता है। ऐसा किसी का शरीर छूट जाता है, अच्छा अन्य सेवाधारी, वो एक वो था ना नागार्जुन का जो सबसे बड़ा था, उसका नाम क्या था, के राजू, यानी एक दो साल के अंदर उसने बहुत ही अच्छी सेवा की, ऐसा लगा इसको पंख लग गया है, उड़ता रहता है, सेवा का प्लान इतना जो बात मत पूछो। परंतु सेवा की वृद्धि करने के लिए ये करूंगा, ये जमीन भी बाबा के काम में लगाऊंगा, इन्हों को नौकरे चाके जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले सबको बाबा का ज्ञान दो, इतना उमंग उत्साह। अचानक खबर मिली तो अचानक ही ऐसे फेल हो गया, कार में बैठा है, जा रहा है बहू के ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर से राय सलाह करने, ओम शांत हो गया। तो समाचार सुनने के बाद सब साइलेंस में एक मिनट जरूर गए, परंतु दूसरे सेकंड में उठ करके फोन वगैरह करके पूछ लिया क्या हुआ, कैसे अभी बहू का ऑपरेशन कैसे होगा, क्या करना है, और डायरेक्शन दे दिया। परंतु देखो तो एक अरस अब इस तरह की, ओम शांति। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है बाप समान बने, तो बाप के समीप तो आए हैं और बाबा के सब गुण साकार हमारे सामने हैं। शिव बाबा तो गुणों का सागर और दाता हैं, लेकिन जिस घाघर ने सागर को समा लिया अपने आप में तो वो कोई कम नहीं रहा है। हम कहते हैं जितनी महिमा हम शिव बाबा की गाते हैं तो साकार ने सब गुणों को धारण किया, प्रैक्टिकल में देखा कि सभी गुणों की बाबा मूर्त बन गए, इसलिए बाबा के लिए कहेंगे वो संपूर्ण, जिसने अपना तन मन धन सब लगा दिया सेकंड में झटक हो गया, तो उसका अपना तो कुछ रहा ही नहीं ना, तो बच्चों के सेवा में उनका कोई स्वार्थ रह नहीं सकता है। मेरे तनक की कोई सेवा करे, मेरी दिल लेने वाला कोई मुझे चाहिए, तो उनको कोई भी स्वार्थ नहीं था सिवाय एक शिव बाबा के, बाकी कुछ भी दुनियावी पदार्थ की आकर्षण नहीं, किसी साथियों की आकर्षण नहीं। नष्ट मुआ भी हो गया, स्मृति लब्धा भी हो गया, और पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग, क्योंकि महादानी स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है, उसकी पुरानी दुनिया की आकर्षण नहीं होंगी, कोई भी आकर्षण होंगी तो वो महादानी नहीं बन सकता है, बहुत ऊंची स्टेज है। तो बाबा ने अपने बच्चों को आप समान बनाए हैं, और प्रैक्टिकल में ज्ञान गंगा इस समय में काम कर रही है, लेकिन ज्ञान गंगा में आप ऐसे नहीं समझना कि बहनी है या दो चार ही है उसमें, नहीं, बहुत बहने बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल में हमारे सामने अनेक और भी आत्माएं हैं जो अथक होकर के निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहती है। क्या होता है, सेवा में थोड़ा भी स्वार्थ होता है ना तो कट हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आज बड़े बड़े महामंडलेश्वर जिन्होंने इतने इतने बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बना तो लिए ज्ञान के आधार से, ज्ञान ऐसा सुना है लोग उसके पीछे झुक गए। और जैसे जैसे आश्रम बना के वो राजा बन के बैठे ना, तो फिर भावना क्या आ गई, पहले तपस्या की, तपस्या से उनको प्राप्तियां बहुत हुई, फिर प्राप्तियों में मस्त हो गए, मस्त हो गए तो वो जो तपस्या का फल था ना वो समाप्त हो गए, फिर वो ऐशी बन जाते, तपस्या के बदले वो ऐश में आ जाते हैं। जब ऐश में आ जाते उनकी गिरावट होती है, फिर उनमें वो शक्ति नहीं रहती, उनके जुबान में वो शक्ति नहीं रहती। इसलिए बाबा जोर देते हैं कि बच्चे तुम अंतर्मुखी रहो, तो अंतर्मुखता से तुम डायरेक्ट परमात्मा से शक्तियों को लेते जाएंगे, ग्रहण करते रहेंगे। और जो आत्मा ग्रहण करती है उनको सदा के लिए फिर अपने में जमा रखना है ताकि लीकेज न हो। जब श्रीमत में मन मत मिक्स होती है लीकेज हो जाती है, जब हम दूसरों के संग दोष में आ जाते हैं तो वो शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। श्रीमत में मन मत मिक्स हुई ना, किसी मनुष्य आत्मा के मत में आ गए, तो मत में आने से फिर वो शक्ति जो है हमारी जमा की हुई वो वेस्ट चली जाती है। इसलिए हमको संग दोष से भी बचना है। तीन बातें हैं, एक तो किसी के संग दोष में नहीं आने का है, और तीसरा है जो श्रीमत है उसकी निरंतर पालना करते रहे, अंदर अंदर गुप्त पालना करते रहे, सच्चाई से पालना करते रहे। अभी शिव बाबा को याद करके आप खाते हो या नहीं खाते हो, मैं खाती हूँ या नहीं खाती हूँ ये मेरा दिल जानता है, बाहर वाले कभी देख भी सकते हैं कभी न भी देख सकते हैं। तो मनुष्यात्माओं के सामने हम ऐसा करें और पीछे सच्चाई से हम अपने मन से बाबा को याद करके न खाएं तो हमारा ही खाता ठीक नहीं रहेगा ना। तो जो बहुत काल से सच्चाई से पुरुषार्थ करते रहते हैं, ईमानदारी अपने साथ भी है दूसरों के साथ भी है, तो ईमानदारी से जो निरंतर बाबा की दिनचर्या पर चलता है, श्रीमत पर चलता है और हर प्रकार की परहेज रखता है, अपने आप को इच्छाओं से मुक्त कर देता है, तो उनमें ये शक्तियां जमा हो जाती है, नहीं तो वो शक्तियां वेस्ट जाती है। इसलिए हमको इन सब शक्तियां जो थी ना वो निरंकारी थी और अलंकारी और विश्व कल्याणी, यानी शक्तियों की स्टेज थी कि वो सदा पहले निराकारी स्टेज में थी। जो जो आज उस निराकारी स्टेज में है तो उसको ऑटोमेटिकली निराकारी स्टेज में सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तियां मिलती हैं। फिर अलंकारी जो हथियार बाबा ने दिया है, ज्ञान का शंख बजाओ बच्चे, स्वदर्शन चक्र चलाते रहो, विकारों को जीतने के लिए ज्ञान का गदा दे दिया है, और कमल फूल समान तुम्हारी स्टेज होनी चाहिए, बाबा ने वो अलंकार भी हाथ में दे दिया, कमल फूल समान तुम्हारी स्टेज होनी चाहिए। तो जो अलंकारों से नित्य सजी सजाई होंगी। और तीसरी बात है कि लौकिक अलौकिक से परे बेहद में, कोई भी हद उसके बुद्धि में न हो। आपने देखा होगा ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एक तो भाषा की हद है, इसके कारण रशा वालों में मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि भाषा वो जानते हैं एक दो की। अच्छा अमेरिका वाले आएंगे, अमेरिका वाले आपस में मिलते जुलते रहेंगे, उनका संबंध भी आपस में होगा। लंदन वाले आएंगे या यूके वाले आएंगे, वो आपस में मिलते जुलते रहेंगे। और हमारे भारत में कहेंगे ये गुजराती है, गुजरातियों का खाना पीना भी अपने ढंग का खींचता है, गुजरातियों को गुजरात का खाना चाहिए, दूसरा मिलेंगे खाएंगे पर पसंद नहीं आएगा, क्यों, हमको भान है मैं गुजराती हूँ, हमको भान है मैं सिंधी हूँ, भान है सिंधी हो तो सिंधी भोजन चाहिए, सिंधी पसंद आएगा, ये सब हद है। ये देवियों के अंदर यह हद नहीं होती, जो भोजन बना शिव बाबा के यज्ञ का बना नहीं, शिव बाबा के डायरेक्शन से बना वो भोजन सबसे बढ़िया है, उस भोजन में शक्ति है। हाँ भाई मिर्ची न खाओ तो तमोगुणी चीज छोड़ दी, नमक जास्ती न खाओ ठीक है तमोगुणी चीज है, जास्ती खाने की जरूरत अभी नहीं है, परंतु जो चीज असली है उसको हम धारण करें। तो असली की जो धारणा है उसमें जो जो बाबा के डायरेक्शन मिले उस डायरेक्शन के ऊपर सिर्फ हम चलते चले, फॉलो करते रहे, एक्यूरेट फॉलो करते रहे, तो एक्यूरेट फॉलो करने वाले के अंदर शक्तियां जमा रहेंगी, लीकेज कहीं नहीं होंगी, नहीं तो वो शक्ति लीकेज हो जाती है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है, जो सबके भले के लिए सबके कल्याण के लिए मैं सुनाती हूँ। तो हमारे पास शुरू शुरू में एक ऐसी बहन थी जो बाबा के बिल्कुल नजदीक आ गई, बाप समान हो गई। उनको पहले लगन बहुत थी, इतनी लगन थी जो उसमें बहुत उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए और फील करती थी तो मेरे को ये शक्ति आ गई है। परंतु चलते 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 उसको अभिमान आ गया अपने आप में कि मेरे जैसी शक्तियां किसी में भी नहीं है, ज्ञान सुनाने का जो जहर है जो मेरे में है वो किसी में भी नहीं है, और जो मैं भगवान के नजदीक हूं ना मेरे जैसा नजदीक कोई नहीं। इन तीन बातों का अहम भाव उसके अंदर आ गया। वो जब भी चलती थी ना तो शक्तियां तो बरोबर इतनी आ गई थी जो हम सब समझते थे कि इसके अंदर इसकी जुबान में कितनी शक्ति है, जो बोलती है वो हो जाता है, जो लोग इसके सामने आते वो झुक जाते हैं, उनको इनके द्वारा साक्षात्कार होता है भगवान का। तो हम खुद उसके स्टेज को देखते रहते थे, ये इनको ऐसी स्टेज इसने कैसे बनाई। तो कहती थी रात दिन मैं बाबा के लगन में मगन रहती थी, मुझे खान पान का होश नहीं रहता था, मुझे दुनियादारी अच्छी नहीं लगती थी, मैंने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं सारा दिन इसमें मस्त रहती हूँ। तो जब मस्त रही इसमें काफी सारी शक्तियों का अनुभव किया तो बड़े बड़े अच्छे जज कोई उनसे भी बड़ी पोस्ट वाले सब इनके आगे एक सेकंड में झुक जाते थे और सब चढ़ावा चढ़ाने लग जाते थे, देवी देवी समझ कर के क्या फलों के टोकरे टोकरे आते थे उनके पास। फिर धीरे धीरे उसको अहम ईगो आ गया कि इतने सारी बहनों के बीच में मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जिसको ज्ञान सुनाती वो एकदम मेरा ही हो जाता है। तो भगवान से लिंक इसका जैसे टूटा ना वैसे सब शक्तियां हमने धीरे 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 देखी सब शक्तियां खत्म हो गई हमारे होते होते। तो हमको वंडर लगता था, हम डरते थे अपने आप में कि भगवान ने जो शक्तियां दी है वो दाता तो दाता ही है, हम उनके ऊपर हाथ नहीं रख सकते हैं। वरदानी भले सबके लिए बन जाए पर भगवान जिसने हमको भाग्य दाता ने भाग्य दिया उसके ऊपर तो वरदान का हाथ नहीं रख सकते ना। तो उसको थोड़ा ईगो आया तो मैं मम्मा से भी ऊपर हूं बाबा से भी ऊपर हूं। बस जैसे ये ईगो आया अंदर तो जैसे मैंने देखा जैसे कोई ऊपर के पहाड़ से वो नीचे गिर गई, और धीरे 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 न उसके बोल में शक्ति न उसके आंखों में शक्ति न उसको कोर्स कराती थी उसमें फोर्स। तो हम सोचते रहे ये सब क्या हो रहा है इसका। फिर एक बारी बाबा से हमने पूछा, बाबा ने कहा बच्ची कर्मों की गति बड़ी हुई है, बहुत हुई है, ये सब कर्मों का फल है, क्योंकि बच्ची बहुत अच्छी बाबा भी जानता है पर बच्ची को ज्ञान का अभिमान आ गया, ज्ञान का अभिमान बहुत नुकसानकारक है, खतरे वाला है। भक्ति मार्ग में अभिमान नहीं होता है तो भावना में मनुष्य चलता ही रहता है, परंतु जो अगर ज्ञान का अभिमान आ जाए ना तो ऊपर के मंजर से नीचे गिर जाता है, फिर वो हडगर चूर हो जाते हैं। फिर उसको काफी समय के बाद अभी है भी नहीं, शरीर भी छोड़ दिया, पर इससे पहले ही बेमुख हो गई और पुरानी दुनिया में चली गई। बीमारी ऐसी हो गई जो माँ बाप माँ को रखना पड़ा अपने पास, माँ ने मुंबई में बुला करके उनको अपने पास रखा, भले बाल ब्रह्मचारी थी एक व्रत उसका पक्का था उसमें वो कच्ची नहीं रही, दुनिया भी बहुत आकर्षण थी, लोग पैसा वैसा उनको बहुत भाई के द्वारा बहन के द्वारा सब कुछ मिलता था, उनको भी उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ईगो ने उसको खत्म कर दिया। तो वरदान की स्टेज को संभालना है क्योंकि वरदाता के द्वारा वो स्टेज हमको प्राप्त होती है, उसके संग में रहने से वो स्टेज प्राप्त होती है, परंतु उसका ईगो नहीं रखना चाहिए। जैसे आप अभी भी देखते ना किसी में बोलने की बहुत अच्छी कला होती है, सब महिमा करते इसने बहुत अच्छा बोला, बहन जी वो भाषण बहुत अच्छा करती है, बहन जी ये बहन तो हमको मिलनी चाहिए, हम इनको अपने साथ ले जाएंगे, बहन जी ये बहन भाषण करती है बस एकदम ऐसा लगता है जैसे मोती इसके मुख से गिरती रहती है। तो जिज्ञासु तो प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन हमको प्रभावित करना उनको शिव बाबा के ऊपर या अपने ऊपर फिदा करना है। तो जो अपने ऊपर फिदा कर देता उसकी शक्ति समाप्त होती जाती है, अंत में एकदम खाली खोखला हो जाएगी, क्योंकि उसने शक्ति को स्वीकार किया कि मैं ऐसी हूं, ये दाता की देन है, ये दाता की बनी हूँ तब उसने मेरे को आगे रखा हुआ है, नाम हमारा का काम बाबा का। जो अपने में निमित्त भाव रख करके चलते हैं ना वो पास हो जाते हैं, नहीं तो उसकी महादान की स्टेज खत्म हो जाती, फिर उसके जबान में वो शक्ति नहीं रहती कि किसी को कुछ बोले और सत्य हो जाए। क्यों? सत्यता की शक्ति, प्रीत बुद्धि हो, संपूर्ण मूर्ति हो, तब उसकी धारणा काम करती है। तो आप और हम सबके सामने लक्ष्य क्लियर है, वरदानी मूरत अर्थात बाप समान, वरदानी मूरत अर्थात बाप समान। दाता की तो महिमा ही परम अपार, उससे तो हम भेंट नहीं करती है, पर जो साकार में थी हमारे जैसा वो ऐसा बन सका तो हम भी ऐसे बन सकते हैं, बस शक्ति की धारणा सभी ऐसी चाहिए। एकदम निरंतर इस धारणा में थोड़ा भी फर्क पड़ेगा तो वो शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए थोड़ी परहेज भी रखनी है, संभाल भी रखनी है, और लिंक बना रहे और दाता को न भूलें कि ये सारी शक्तियां दाता के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, तो दाता के साथ हमारा संबंध सदा अटूट रहे। अगर वो संबंध अटूट होगा तो हमारी धारणा से ऑटोमेटिकली दूसरों की सेवा होगी, क्योंकि हम है ही विश्व सेवा के लिए। शिवमयी शक्तियां माना विश्व सेवाधारी, शिवमयी शक्तियां माना एकदम सारे विश्व की बेहद की सेवाधारी। इसलिए जात पात का भेदभाव भी न हो, हदें न हो, हदें नुकसान करती है उसमें शक्ति नहीं आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप भी इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना और प्रैक्टिकल के ऊपर भी अभ्यास रखेंगे, और इसमें कुछ आपको कुछ कहना हो तो भी कह सकते हो, कुछ पूछना तो भी पूछ सकते हो। हाँ, बोलो। भी एक भाई प्रश्न पूछता है। हाँ? प्रश्न पूछता है कि जैसे दादी जानकी के मैंने बारे में पूछ बताया ना कि दादी जानकी एकदम सोई भी रहती थी ना, तो सोते सोते भी उनका सोना भी सेवा करता था। तो कहते हैं इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करो। तो उनका जो सोना था ना वो साधारण सोना नहीं था, मानो वो बहुत अच्छे पुरुषार्थ में, गहरे पुरुषार्थ में रहती थी, बीमारी से मुक्त, अपने को बीमार नहीं समझती थी। आज भी कहते मैं थोड़ी बीमार हूं, चलो मेरे शरीर का कोई हिसाब किताब हो चुप हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलती है जैसे ये कुछ ही है नहीं। हम तो कहेंगे नहीं दादी आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप थोड़ा ध्यान रखो, आप थोड़ा ये करो, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये कुछ भी नहीं है, कुछ बीमारी की तो बात ही नहीं पूछती है, सेवा के लिए कह दो तो वो सेवा अथक होके करेंगे। तो दादी जानकी की जो धारणा है ना, ये बहुत काल से बीमारी से अपने आप को मुक्त कर दिया है और निरंतर बाबा को कंबाइंड बाबा के साथ कंबाइंड होकर चलती है, उस स्मृति में रहती है, अंतर्मुखी रहती है, टाइम उनका वेस्ट नहीं, श्वास वेस्ट नहीं, संकल्प वेस्ट। तो शक्ति जमा होने के कारण वो सोई रहती है ना, तो अंदर आत्मा शक्तिशाली है, भले मेरे शरीर में थोड़ी ढीलापन है पर अंदर आत्मा शक्तिशाली है। तो जो सामने आते हैं ना वो ऐसे दृष्टि पड़ती है तो उसकी सेवा हो जाती है। समझ में आया भ्राता जी? ठीक है, अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वो कहानी क्या देखा मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। तो जिस बहन की मैंने कहानी सुनाई ना आपको, तो वो ऐसी बहन थी जिसका निश्चय या पवित्रता बाल्यावस्था में ही, मानो पति ने शरीर छोड़ा था, थी माता, पर शादी के अभी आई थी, 6 मास हुआ था तो उसके पति ने शरीर छोड़ दिया। तो छोटी आयु में आपको पता है कि लोग बहुत पीछे पड़ते हैं कि इसकी शादी करा दो शादी। उसने कहा जब एक से जिनसे मेरा हिसाब किताब बना वो ही चला गया तो दूसरे के साथ कौन सा भरोसा, बस अब तो मैं भगवान की हो गई, अब मुझे सारी जिंदगी भगवान के याद में व्यतीत करना है, सत्संग में बन करके रहना है और मुझे दुनियावी लाइफ नहीं चाहिए, मेरी फिनिश हो गई। थोड़े समय के बाद इसको ज्ञान मिला, तो जैसे ज्ञान मिला ना तो ये एकदम से इधर आ गई। इधर आ गई तो उसको तो कितने साल, 15-20 साल गुजर गए, 20-25 साल गुजर गए समझो यहाँ ज्ञान में। तो पहले बॉम्बे में रही काफी समय, फिर नरयाद में रही, फिर जो बड़ौदा में रही, फिर नरयाद में रही, ऐसे मतलब अभी नरयाद में आके पहुंची थी। तो उसको 25-30 साल तो हो गए थे। तो 25 साल के बाद एक व्यक्ति उसके पास उनके सेंटर में आया। कहानी बड़ी विचित्र है, तो एक भाई उनके पास सेंटर में आया और उसका पुराना नाम पूछा, तो उसका पुराना नाम कुछ और था और ज्ञान में चलने के बाद उसका नाम कुछ और हो गया। तो हम तो छुगी छुगी दादी करके बोलते थे, प्यार से उसको छुगी बोलते थे, पर पहले का नाम कुछ और था, पुष्पा रानी था या क्या था। तो वो भाई पूछने लगा कि वो फलानी है और उसके पति का नाम ये था, तो मैंने सुना है वो नरियाद में रहती हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नाम वाली कोई भी बहन हमारे पास नहीं है, कोई भी समर्पण बहन हमारे पास ऐसे नाम वाली नहीं है। उसने कहा नहीं, उसका पहले का जो पति था ना, उसका उसके पति का नाम मोतीराम था। तो उसको फौरन स्मृति आ गई, बोला ये तो मेरे लिए बोलता है, तो मेरा पहले का नाम बरोबर पुष्पा था, यानी कोई भी नाम था मुझे याद नहीं आते हैं। तो कहा हाँ भाई तुम कैसे जानते हो उसको? तो उसने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है तुम ही थी, मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारे पति का नाम फलाना नहीं था, मोतीराम समझो नहीं था। तो उसने कहा हाँ भाई उसका नाम तो ऐसा था। भाई तुम उसको कैसे जानते हो, तुम मेरे को कैसे जानते हो, मैं तो 30 साल से इसी यज्ञ में हूँ। कहते हैं बहन जी मैं तुमको 30 साल से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ हो मुझे ही पता नहीं लगा। तो ऐसे करके उसने ऐसे बिठाया, आओ भाई बैठो, जलपान करो, पानी पानी पिलाया। फिर पानी पानी पिला करके कहा बहन जी एक छोटी सी बात है, वो मैं आपके आगे करना चाहता हूँ। मुझे आपका सुपन आया कि आप कोई मेला करने वाली हो। तो उसने कहा हाँ भाई मेला तो मैं करने वाली हूँ। तो कहा कौन सा मेला? का एक आध्यात्मिक मेला जिसमें अनेक आत्मा का कल्याण हो जाए, तो मेरा मेला करने का संकल्प है। लेकिन मैंने देखा अंदर में कि भाई इतने मेरे भाई बहने नहीं है, साधारण भाई बहने हैं, इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाबा को कहा बाबा ये तो आपका काम है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, मेरे अंदर की भावना है, आप मदद करेंगे तो ये मेरा मेला हो जाएगा। तो कहा बहन जी मैंने सुपन में देखा कि तुम कह रही हो कि मुझे मेला करना है, तो इसलिए मैं तुमको कुछ देने के लिए आया हूँ। तो वो तो हैरान हो गई कि मेरे को मेरा, मैंने बाबा से बात की, बाबा ने इसको कैसे टच किया ये कैसा ही आया। कहा बहन जी बात ये है कि आज से 30 साल पहले जब तुम शादी करके आई थी, अभी 6 मास हुआ था, तुम्हारा जो पति था उसका मैं दोस्त हूँ। तो उस समय मेरे को मेरे पैसे की हालत इतनी कम हो गई, जो मैंने तुम्हारे पति से तुम्हारा पैसा मांगा कि भाई ये कन्या शादी करके आई है, जो तुमको इनका दहेज मिला है ना वो तुम हमको दे दो, तो मैं फिलहाल अपना काम करूं, फिर जब पैसा हो जाएगा तो मैं ब्याज सहित आपको दे दूंगा। तो कहा तुमको याद है तेरे पति से तेरे सामने ही मैंने पैसा मांगा था और फिर उसने दिया था मेरे को। तो कहा हाँ, जब तुम बात करते हो, बात तो बहुत पुरानी है, 30 साल गुजर गया, पर जब तुम बात करते हो तो मुझे थोड़ा ख्याल आता है कि बरोबर 11,000 तुमको उसने दिया था। तो कहा तो ऐसे करके ना वो पैसा 11,000 और उनके साथ थोड़ा कुछ और डाल करके ना वो उनको लिफाफा पकड़ा करके जल्दी जल्दी जाने लगा कि बहन जी बस मैं तुमको ढूंढ रहा था, तुमको मेला करना ना, ये पैसा लो, उस मेले में लगाओ, मैं जा रहा हूँ। तो सुगी दादी तो हैरान हो गई, ये बाबा ने कैसा मेरा काम किया यानी संकल्प उसका बरोबर था कि मुझे मेला करना है, बाबा आप ऐसा बच्चा भेजो जो ये मेला मेरा हो जाए, मुझे बाबा का संदेश इस आनंद में जरूर देना है। तो सचमुच ही वो आया और पैसा देके चला गया जल्दी जल्दी में, पूरा पानी भी नहीं पिया। उसको ये ख्याल आया कि कहीं ये न कहे कि इस 11,000 का ब्याज कितना बनता है, ब्याज तो बहुत बनता है, तो तुमको इतना हजार मुझे देना चाहिए। तो वो उसे डर के मारे मूल दे करके, मूल जो पैसा था वो दे करके वो चला गया। तो फिर दादी ने देखे, दादी के पास लेके आई पैसा, दादी देखो आप तो मुझे मेला करने की छुट्टी नहीं देते थे, अब मेरा बाबा ने सुना और मेरा ही पुराना कर्ज था उसके पास, वो मेरे को देखे और चला गया। तो हमने देखा देखो इसका निश्चय, उसमें कितनी पावर, और इसने किसी बंदे से नहीं पैसा मांगा, भाई गरीब मेरे भाई बहन है चिंता के वो इतना नहीं कर सकेंगे, तो बाबा के ऊपर अपना हक लगाया और बाबा ने उनका पुराना ही कर्ज उनसे चुक्त करा दिया, उनका पैसा सफल हो गया, जो उनको लौकिक नाते से मिला ना दहेज में वो सारा पैसा फिर उसके यज्ञ के मेले के आध्यात्मिक मेले के कार्य में सफल हो गया। तो वो जो भी पैसा मिलता था ना, वो हिसाब हिसाब रखती थी, ये यज्ञ के इस खाते के लिए मिला, ये इस खाते के लिए मिला, मानो अलग अलग करके हिसाब यज्ञ में देती थी। खुद पुराना सुराना पहनती रहती थी, नई साड़ियां ढेर इकट्ठी करके यज्ञ में भेज देंगे, कहेंगे क्या करना है पुराने तरीके में। तो त्याग मुहूर्त, पवित्रता की मुहूर्त, निश्चय बुद्धि, धारणा में अच्छी, कोई भी मन में किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं, तो ऐसी आत्मा की सिद्धि हो जाती है, संकल्प सिद्ध हो जाता है। ये मिसाल मुझे याद है, मैं कमेनों को बताऊंगी। अच्छा है ना। ओम शांति।